आइए देखते हैं लफ्ज़ अलव्वल हदीस की रोशनी में, इसके बारे में हदीस में क्या बात आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अज़ल से मौजूद था और इसके सिवा कोई चीज़ मौजूद न थी, और इसका अर्श पानी पर था, लोहे महफूज में इसने हर चीज़ को लिख लिया था। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों ज़मीन को पैदा किया। सही बुखारी की रिवायत 3191 है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप अल्लाह ताला के बारे में ये बातें जानते हैं ना, तो आपको क्या फील होता है। जैसे मैंने अभी ये हदीस पढ़ी तो मेरे जहन में पता क्या आया, कभी आप अपनी नानी के पास बैठते हैं, नानी अपनी बचपन की बातें सुनाइए, नाना आप बताइए, बड़ों से उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है ना, बस वही जहन में ले आइए। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के बारे में जानते जाएंगे ना, तो आपको जैसे वो प्याज के परत खुलते जाते हैं ना, तो इंसान उसको खोलता ही जाता है, तो ऐसे लग रहा है अच्छा फिर पहले क्या था, फिर दुनिया कैसी थी। कभी आप खाना कहवा की पुरानी तस्वीरें देखें तो आपको मेरी बात की अंदाज़ा होगा, पुराना सा घर, दूर दूर घर थे, मटियाली सी जगह, फिर वो कहते हैं 50 साल बाद ऐसा हुआ ये हुआ, अब 2020 में ऐसा हो गया। ज़रा सोचिए ये दुनिया शुरू में कैसी थी, और सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, पूरा ग्लोब खाली था, पूरी गैलेक्सीज नहीं थी, वन टू वन बाय वन, एक से एक चीज़ बनती गई क्योंकि अलव्वल मौजूद था। और इसे एक और बात भी नोट कीजिए, लोहे महफूज का बहुत जिक्र आपको मिल रहा है अलव्वल में, तो अपनी ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी बनाइए, क्या आपने अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के बाद तकदीर को भी मानना है, चीज़ों को लिखना भी है, और पहले प्लान कीजिए फिर काम कीजिए। हम काम शुरू कर देते हैं, प्लानिंग कोई हुई नहीं होती। फिर इसी तरह से एक और रिवायत लीजिए, अहादीस में ये कैसे आता है, सही मुस्लिम की रिवायत 134 है, आपकी पीछे से तवील बात है, उसका एंड क्या है, आपने फरमाया लोग हमेशा एक दूसरे से फजूल सवालात करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ अल्लाह कौन कैसे क्या कुछ, यहाँ तक ये सवाल भी होगा कि अल्लाह ने सब मखलूक को पैदा किया है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। जो शख्स ऐसी कोई चीज़ दिल में पाए तो कहे आमंतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, सही मुस्लिम की रिवायत है 134। तो इस सारे नाम के अंदर जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो बस ज़्यादा यकीन इस बात का रखिए कि वो है बस। फिर सलफ सालेहीन ने अलव्वल के बारे में क्या समझा, इसके भी चंद कोटेशंस ले लीजिए। इमाम बहकी कहते हैं, अलव्वल वो हस्ती है वो जिसके मौजूद होने की कोई इब्तदा नहीं। पीछे जाते जाएंगे, अकल के घोड़े दौड़ाते जाएंगे, लेकिन आप उसकी इंतहा को नहीं पा सकते। इसरे इब्ने जरीर तबरी कहते हैं, जो हर चीज़ से पहले मौजूद था बगैर किसी शुरू होने की हद के, वो है अलव्वल। और इमाम खताबी का कॉल तो आप सुन चुके, अलव्वल का पहले आने का हक है क्योंकि ना इससे पहले कोई था ना इसके साथ है कोई। तो आप क्या कहते हैं अलव्वल के बारे में, वो हर एक चीज़ से पहले है और इस अव्वलियत की कोई इंतहा नहीं, और या ये कि वो अव्वल है कि हर एक पहली चीज़ को अव्वलियत अता करने वाला है, और वो सबसे अव्वल और इससे पहले कोई नहीं। ये तफसीर इब्ने अब्बास की रिवायत है, और तफसीर मजहरी में आता है, वही हर चीज़ से पहले है, कोई इससे पहले नहीं, क्योंकि हर मौजूद चीज़ को नीस्ती, नीस्ती कहते हैं ना होना, नीस्ती से हिस्ती, यानी नीस से हिस्त, नो से यस लिख लें इंग्लिश में लिख सकें, मिलाने वाला वही है और इसी ने मादूम को मौजूद किया। बातें मुश्किल है, लफ्ज़ों में मुश्किल होती है। बस एक और कोटेशन लीजिए, डॉक्टर इसरार साहब इसके बारे में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि ये कायनात हादिस है, हादिस मीन नहीं, एक वक्त था ये मौजूद नहीं थी, और जब ये मौजूद नहीं थी उस वक्त कौन मौजूद था, जाहिर है कि अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था, तो इस कायनात का आगाज कहाँ से हुआ, अल्लाह की ज़ात से। समझ रहे हैं ना बात को, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा ना जहन में, हालांकि हमारी अक्लें गूंग हो जाती हैं, यानी अल्लाह था तभी कायनात बनी, तो आप कहिए कायनात से पहले भी अलव्वल था, क्या बनेगा इंसान का। इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, आप कहते हैं घर तब बनाया, ये उस उम्र में बनाया, ये मेरे से पहले का, ये नाना दादा के वक्त का घर है, ये मेरे ससुराल का घर है, आप घर को पूरी कायनात पे लीजिए, कितनी बड़ी हस्ती और कितनी पुरानी हस्ती है, और आज भी ऐसे लगती है एवर न्यू। तफसीर माजिदी की भी रिवायत सुन लीजिए, लिखते हैं कि इस मौजूद हकीकी का वजूद, कौन है मौजूद हकीकी, अलव्वल, मेरा आपका प्यारा रब, हर दूसरे वजूद से यहाँ तक के वजूद ज़मान से, ज़माने के एतबार से मुकद्दम और साबिक रहा, अदम साबिक कभी इस पर तारी ना हो सका, यानी कोई इसके बाद में आने वाला इसे पहले नहीं आ सका। बाज़ मुशरिक कौमों ने इसी की ज़ात को भी हादिस समझा है। अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती किस तरीके से थी, है और रहेगी। आप कायनात की जो मुख्तलिफ चीज़ें उसको जहन में लाइए, आप देखिए कि अल्लाह ताला की हस्ती, उसको समझने के लिए आपको मुझे ज़रूरत है इस चीज़ पे गौर व फिक्र करने की कि हम अपने मालिक को पहचाने। कैसे अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई? तो सबसे पहला, फर्स्ट वन, उससे पहले कोई नहीं और इसके बाद कोई नहीं होगा, ये वो हस्ती, ये वो ज़ात है कि जिसने इंसान के लिए ये खूबसूरत कायनात बना दी। तो अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला वो है जो हकीकत में हर चीज़ को खोल खोल के दिखाने वाला। आप देखिए बिफोर द सन, अल्लाह ताला वो है जो ज़मीन से पहले, सूरज से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, दिन से पहले, रात से पहले, बिफोर द स्काई, आसमानों से पहले वो ज़ात है, पहाड़ों से पहले वो रब है, उसका वजूद है, उसकी हस्ती है, और इंसानों से पहले, शैतानों से पहले। और अल्लाह ताला वो है जो इटर्नल है, हमेशा, एवरलास्टिंग, उसको फना नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और वो है कि जो सबसे पहले और उससे पहले कोई नहीं है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत लेते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ज़मीन के आगाज़ में भी था और इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में तसव्वुर ही नहीं आता कुछ और। तो लफ्ज़ अलव्वल जहन में रख कर कुछ दुआओं को भी देखते हैं, और ये दुआ बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर पर कर्ज़ की अदायगी के लिए ये दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये दुआ भी सीख चुके हैं। आपको प्रोटेक्शन की दुआएं सिखाई गई पिछले चंद माह में, इसी तरह आपने पूरी समाज नबवी ली, आपने हिस्नुल मुस्लिम ली, तो उसमें सब दुआएं आपको अल्लाह ने दिलवा दी। आप बार बार उनको रिवाइज़ कीजिए, जाकर यूट्यूब से या फेसबुक या जहाँ भी आपके अप्रोच है वहाँ से उनको खोलिए और दुआओं को सुनिए। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा, ज़रा से महसूस कीजिए, रब समावाती, आसमानों को जहन में लाएं, व रब अलअर्दी, और ज़मीन के रब, व रब अलअर्श अलअज़ीम, और अर्श अज़ीम के रब, रब्बना हमारे रब, व रब कुल्ली शयइन, व रब और रब कुल्ला हर शई इन चीज़ के, फालिकल हब्बी व नवा दाने और गुठली को फाड़ने वाले, व मुंजिलत तौरात वल इंजील वल फुरकान, तीन बड़ी किताबों की बातें, तौरात को उतारने वाले, इंजील को उतारने वाले, और फुरकान यानी कुरान को उतारने वाले। अब यहाँ से दुआ देखिए, आऊज़ु बिका मिन शर्री कुल्ली शयइन अंता अख़िज़ुम बिनासियतिही, तेरी पनाह में आती हूँ हर उस चीज़ के शर से जिनकी पेशानियाँ तूने थामी हुई हैं। ये पेशानी, हाथ लगाइए अपने माथे को, फोरहेड, इज्जत का मसला, कभी पेशानी झुकती है रब के आगे? किस नीयत से जाते हैं? और तकदीर भी मुराद है, यानी बंदे को झुकाना, उसको सर के बालों से पकड़ना, सियतिन कासिबा, सूरत अलक में आता ना, ये तेरी झूठी पेशानी, ये झूठी इज्जत की बातें करते हैं। आज हम कितना अपनी इज्जतों की बातें करते हैं। अल्लाह कहते हैं इस दुआ में नबी के जरिए से कि देख लो सारी मखलूक की पेशानियाँ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लक शय्युन, ए अल्लाह आप पहले हैं और आपसे पहले कोई भी ना था, व अंतल आखिरु और आप आखिर में हैं, फलैसा बादक शय्युन और आपके बाद कोई नहीं, व अंत ज़ाहिरु और आप तो ज़ाहिर हैं, फलैसा फ़ौक़क शय्युन और आपसे ऊपर कुछ नहीं, व अंतल बातिनु और आप बातिन हैं यानी छुपे हुए, फलैसा दूनक शय्युन और आपसे सिवा कोई चीज़ ही नहीं। इब्ने माजा की ये रिवायत है, इसके तर्जमे को सुनते वक्त ज़रा महसूस कीजिए, इस नाम के ऊपर ज़रा सा अपने आप को ना फोकस करना पड़ता है। एक तो इतना मारूफ नहीं है, और दूसरी बात है हमारे इमेजिनेशन में आ भी नहीं सकता, पहले ही मान लीजिए। क्या है तर्जमा? ए अल्लाह, आसमान और ज़मीन के रब, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए हमारे रब और हर चीज़ के परवरदिगार, ए दाने और गुठली को फाड़ने वाले और तौरात इंजील और फुरकान यानी कुरान को नाजिल करने वाले, मैं हर चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ, जिसकी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है। ए अल्लाह तू ही अव्वल है, प्यार से कहा करें, आप भी ऐसे मांगा, ए अल्लाह आप अव्वल है ना, मुझे भी अव्वल कर दे, ए अल्लाह मुझे भी नंबर टू पे नहीं रहना। इस नाम का ये तकाजा है कि बंदा जिंदगी के हर मामले में अव्वल पे रहे, पायनियर, फर्स्ट। हम लोगों के मुंह देखते रहते हैं, सेल लग दी है तो अव्वल हम हो, लगने से पहले ही दरवाजे पे पहुंच जाए। और कुरान का, अच्छा जिस दिन तकमील होगी तो बताइएगा, दुआ में आ जाएंगे। अच्छा क्लास वो ये 3 घंटे, आखिर में आऊंगी, मैं दुआ से पहले आ जाऊंगी। नहीं, लिखिए अपने लिए अमल। अलव्वल लफ्ज़ का तकाजा है, और इस नाम पे गौर करके आपके ऊपर जो असरात मुरतब हो, ये कि आप हमेशा दी वन, नंबर वन पे रखिए। ये नहीं कि दूसरों को हुज्जे हुज्जियाँ मार मूर के आगे पार जाए, वक्त से पहले निकलिए। साबिकुन अलव्वलीन फ़फ़िरु इलल्लाह फ़स्तबिकुल खैरात, तो आप कहिए कि अल्लाह आप भी अव्वल है ना, तो मुझे भी अव्वल कीजिए। अपने बच्चों को दुआ सिखाइए, बेटा यू वॉन्ट टू बी फर्स्ट, फर्स्ट आना है, ये दुआ मांगा करो। बस तुझसे पहले कोई चीज़ ना थी और तू ही है आखिर, तेरे बाद कोई चीज़ ना होगी और तू ही जाहिर है, तुझसे बालातर कोई चीज़ नहीं, और तू ऐसा बात ही ना कि तुझसे मख्फी कोई चीज़ नहीं। तो क्या पता चला, लफ्ज़ अल अव्वल प्यारे रब का नाम है। अगर आप इसके साथ अल मौइज़त अल हसना देखें, तो इस नाम के कुछ तकाजे हैं हम पर, वो क्या हैं? सबसे पहली बात कि ज़ात और सिफात में अल्लाह ताला सबसे पहले हैं, इस बात का पुख्ता यकीन कीजिए, और इस बात को याद रखिए कि जहाँ अल्लाह की बात आ गई उससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे बच्चे को आप गिनती सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका बच्चा आपको गिनती सुनाए, मामा मैं सुना मुझे आ गई है ना काउंटिंग, क्या 1 3 5 9 2 5 6, आप कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ये बैक एंड फोर्थ क्या होता है, आगे चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कोई कहता है मुझे आती है गिनती, क्या आती है, ए बी जी एच बी के सी, भाई तुम पीछे आ गए हो। तो इसी तरह याद रखिए आपका मेरा पुख्ता यकीन कि अल्लाह की हस्ती है वो चीज़, वो ज़ात जो सब सिफात में पहले, औकात में पहले, ज़माने के हिसाब से पहले, हर आइडिया पहले उसके पास है, हर ख्याल उसके पास है, हर इरादा पहले अल्लाह से बनता है। ये जो आपके मेरे इरादे बनते टूटते हैं ना, पहले अल्लाह की तरफ से आते हैं। फिर इसी तरह इस नाम के साथ ताल्लुक़ का एक और हक क्या है, कि इंसान पर अव्वल हक अल्लाह का हो, और इसका हुक्म अव्वल दर्जे पर हो, इसका हुक्म मानने में देर नहीं करनी। जी कैसे, सूरत तौबा की आयत याद आ रही है मुझे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल इनकाना बाउकुम वबनाउकुम, 8 से 9 चीज़ों के नाम लेके अल्लाह ताला ने बयान कर दिए कि देखो तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे घर, कुंबे, बिरादरियाँ, और तुम्हारी वो प्यारे प्यारी चीज़ें जिनके पीछे मरते हो, क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारे हैं? अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम्हें अल्लाह और उसके दीन और उसके रास्ते की जिद्दोजहद से प्यारे हैं, तो फिर इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री। तो लिखिए आज के बाद, और अल्लाह करे कि नस्लों तक लोग इससे फ़ायदा उठाते रहे, और जिनकी मेहनतें अल्लाह उनको भी इसका हिस्सा कब्रों में देता रहे। आप इस वक्त अगर सुन रहे हैं ना खामोशी से, तो आप भी मेरी मददगार हैं, आप ना होते तो मैं किसको सुनाती। तो अल्लाह आप सब सुनने वालों को जो बैठ कर जिस जगह से भी जैसे भी सुन रहे हैं, या अल्लाह उनको भी इसमें शामिल कर ले। तो आपका मेरा अमल क्या है, हमेशा अल्लाह को पहला हक दीजिए। अल्लाह का हुक्म सर आंखों पे, उसका हुक्म आ गया, अब शौहर बीवी बच्चा माँ बाप भाई, ये छोटे 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 हमारे फिर रहे होते हैं शरीक। याद रखिए अमलात में नहीं पता चलता कि हमें अल्लाह से कितना प्यार है, पता पता कब चलता है, जब एक तरफ अल्लाह की बात और एक तरफ शौहर की बात, एक तरफ अल्लाह की बात और एक तरफ माँ बाप की बात, और एक तरफ अल्लाह की बात और दूसरी तरफ दोस्तों की बात, जब कोई तकाबुल आता है फिर किसकी लेते हैं, अल्लाह की के बंदों की। बस ये है आपका मेरा काम, चेक कर लीजिए, एक हफ्ता अपने आप को चेक कीजिए, सिर्फ अपने एक हफ्ते की मामूलात को देखिए कि क्या वाकई मैं अल्लाह का हक सबसे पहले देती हूँ। तो हकूकुल्लाह सबसे पहले, हकूक अलबाद बाद में। यहाँ एक जुमला भी नोट कीजिए, लोग कहते हैं क्या हुआ इतने अच्छे काम तो करते हैं, ये गोरे हैं फलां हैं और ये जी नॉन मुस्लिम हैं, फिर क्या बंदों के तो बड़े काम करते हैं, तो रब किधर गया, अलव्वल किधर गया, खालिक किधर गया। देखिए अपने माँ बाप को तो पूछें भी ना, और जाकर दूसरों को आंटी और अंकल और उनके प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे, ऐसी औलाद को आप क्या कहेंगे। अपनी बीवी को पूछे ना, और बाहर जाकर बेवा औरतों की खिदमतें करता रहे मर्द, ये क्या बात हुई। तो याद रखिए अलव्वल अलव्वल, तो अल्लाह का हक सबसे पहले। हमारा सबसे बड़ा मसला आज के दौर में कल्चरली है कि हम इंसानों के आगे ऐसे दबते, ऐसे मरूब होते, एक 5-6 फुट का इंसान हमें झुकाने को काफी है, और वो हस्ती जो थी, जो है और जो रहेगी, उसका खौफ नहीं आता। हम क्या खाते, हम क्या पहनते, हम किधर जाते, हमारे मामूलात क्या हैं, जरा सा खुद से पूछिए, क्या अल्लाह का हक अदा करके आती हूँ? क्या मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला का मामला सबसे पहले है? फिर इसके बाद आप देखिए कि जब आप अल्लाह की बात को 1 पे रखेंगे ना, टॉप 1, आपने कभी एक नाम सुना होगा, टॉप 10, टॉप लिस्ट, और मिलियनेरियंस, 5 स्टार, 10 स्टार, इन सारे स्टार्स के ऊपर अल्लाह का स्टार लगाइए। मैं चंद सेकंड खामोश रहती हूँ, आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, वाकई बंदों के आगे मैं अल्लाह के हक भूल तो नहीं जाती? एक बंदे की छोटी सी बात सामने आ जाए, हमें लाले पड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, चल पड़िए, फस्तबिकुल खैरात, भागो, दौड़ो, जल्दी करो, नेकियों के मौके का पहले से इंतजार कीजिए। अल्लाह कहते हैं जो निकलेंगे वो चल पड़ेंगे, सूरह मोमिनून की आयत याद आ रही है, साबिकून, पहले से तैयार। आप देखिए खिलाड़ियों को देखा करें, कितने हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनको खेलना होता है, उनको फर्स्ट आना है, और जब उनको भागना होता है, साबिक कहते हैं खिलाड़ी को, रेस में जब दौड़ करते हैं, दौड़ते हैं ना, रेसिस होती हैं, तो जो एक से दूसरे के आगे होते हैं उनके लिए भी यही लफ्ज़ आता है। क्या मैं अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में नेकियों में दौड़ लगा रही हूँ? कितने को लम्हे रह गए मेरे पास? पता नहीं दिन हैं, हफ्ते हैं, महीने हैं, साल हैं, यकीन कीजिए साल भी अगर हैं तो महीने लगते हैं अब, और अगर महीने हैं तो मान लीजिए कि चंद हफ्ते की बात है, और हफ्ते छोड़िए दिन, कलम हिल बसर, मेरी आपकी मौत कहाँ खड़ी है, आपने कभी सोचा? और याद रखिए, क्यामत के करीब जवान मौतें कसरत से होंगी, अचानक मौतें कसरत से होंगी, तो अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझिए। फिर इसी तरह अगला असर आपके मेरे ऊपर इस नाम का क्या दिखे कि अल्लाह का जिक्र हर चीज से पहले होना चाहिए। कुरान की आयात और अहादीस देती है ना आपको इसकी गवाहियां। पहला जुमला जो बंदा मोमिन पढ़ता है वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ये भी समझ आ रहा है क्यों हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूं। बच्चे भी पूछते हैं, मामा बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ूं? इसलिए कि वो अव्वल है। अल्लाह का जिक्र कीजिए हर चीज से पहले। घर में आए बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तू, घर से निकल रहे तो बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तू, घर में आ रहे तो बिस्मिल्लाह ही वलजना, सोने जा रहे सोकर उठे बिस्मिकल्लाहुम्मा और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, सवारी पे बैठे सुभान अल्लज़ी, बंदाए मोमिन के रोजो शब लफ्ज अल्लाह के साथ गूंजते हैं, क्योंकि अलव्वल है वो, उसके साथ अपना ताल्लुक रखे। फिर इसी तरह एक और अमल अपना मेरा क्या रखिए, किसी का शुक्र अदा करना है ना, तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर बंदे का शुक्र अदा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमल्लम यशकुरिन नासलम यशकुरिल्ला, वो जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया, तो पहले लोगों का नहीं अल्लाह का। हम लोगों का कि थैंक यू, थक थक थक, ओब्लाइज्ड, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बड़ा ही मजा है, कोई खाना खिला दे, पीछे पीछे जाते हैं, तो वो किसने दोपहर को खिलाया, तो वो सुबह नाश्ता किसने कराया, तो आधी रात में किसने खिलाया, उसका भी शुक्रिया अदा कीजिए। और किसी भी बंदे के दिल में अल्लाह डालता है, याद रखिए, किसी की जरूरत नहीं कि आपको एक लुकमा दे सके, कोई आपको एक स्माइल दे सके, आपकी कोई एक बात मान सके, ये वो मालिक है दिलों में डालता है। फिर इसी तरह एक और असर हम पे क्या हो कि दुआ करते हुए अल्लाह ताला को अव्वलियत दीजिए, यानी अपनी हाजतों से पहले इसका जिक्र कीजिए और इसकी तारीफ करें। मिसाल दो इसकी, सबको आती है सूरत अल फातिहा, पहली 3 आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, 3 आयतें, और अगर बिस्मिल्लाह भी डाल लें तो 4 आयतें सिर्फ अल्लाह की तारीफें हैं। बंदे मोमिन का दिल ही नहीं भरता, तारीफें करे रब की फिर मांगे। आम लोगों से कुछ मांगना हो क्या जाते कि जरा फोन दीजिएगा, ये कितने, आप थोड़ी बात करते, बच्चे जरा देखा करे, मामा आप कितनी अच्छी हैं, मामा आप सो ना, मामा कैन आई टेक अ कैंडी प्लीज, मामा चॉकलेट ले लो, मामा मेरी रिपोर्ट नहीं अच्छी आई। यदि हम पहले सबके लाख के करते हैं, फोन आए सलाम अलैकुम, टू दी पॉइंट बात तो हम करते ही कोई नहीं है, पहले 2-4 करके बातें, मौसम के हालात पूछ पाछ के, फिर असल बात से पहले फोन बंद होता है, फिर कहते ओहो जिसके लिए फोन किया था वो तो भूल ही गई, फिर करती हूँ। तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, जिससे मांग रहे हैं पहले उसकी तारीफें तो कीजिए। پھر اسی طرح یہ کہ اللہ کو اول مانا تو سب سے اہم کام اس کو خوش کرنا ہے، تو نیکیوں میں اولیت اختیار کیجیے، گناہوں میں پیچھے، مکروہات میں پیچھے، نافرمانیوں میں پیچھے، اور نیکیوں میں سب سے پہلے آپ. اور وقت ہوتا تو آپ کو میں ابو بکر صدیق کی وہ مثالیں سنا دیتی. تو چلیے ایک ہی حدیث سے شاید سمجھ آ جائے کہ ایک موقع پہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا، چند نیکیوں کا ذکر ہے، اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں، تم میں سے کون ہے جس نے صبح صدقہ کیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہے. اچھا، تم میں سے کون ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ پھر ہاتھ ابو بکر کا. ایک بات، دو بات، تین بار، یہ کیا بات ہوگی؟ ابھی تو دن شروع ہوا ہے ہماری، تو فجر کوئی پوچھے تو صحیح آنکھیں بھی کھولتے نہیں ہیں کہ وضو کرتے ہوئے پانی چلا گیا تو پھر نیند خراب ہوگی. ابو بکر، آپ یہ سب کچھ کیسے کر گئے؟ کہا، بس اللہ کے نبی صبح اٹھا، پھر اپنے گھر سے رستے میں جاتے جاتے پتا تھا ایک بیمار ہے، اس کی عادت کر لوں، پھر پتا چلا اس کے گھر میں کچھ کام ہے، کچھ کام کر دیا، کسی کو مدد کر دی، تو وہ راستے میں کوئی فقیر ملا تو صدقہ بھی دے دیا، اور فجر کے لیے تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں. تو نیکیوں میں آگے چاہیے، واللہ ہی خوشیاں پانی ہیں تو اس میں آئیے، آپ کا دل خوشیوں میں لوٹ پوٹ ہوگا. پھر اسی طرح اپنی عبادات، یعنی ہماری عبادات، ہمارا اخلاق، دوسروں کے ساتھ معاملات اول درجے کے ہونے چاہیے. ہمیشہ اپنی عبادت کو بہتر بنائیے، اول وقت پہ نماز پڑھیے، کسل مندی کی نمازیں نہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا نہ ہو، اور نہ یہ ہو کہ الذین ہم فی صلاتہم ساخون، سستیوں والی نمازیں نہ ہو، غفلت والی نمازیں نہ ہو. اخلاق بہت پیارا رکھیے، بازاری اخلاق نہیں چاہیے، وہ اخلاق جو گھر کے نوکر سے بھی ویسے ہی ہے جو باہر کے کسی بڑے سے. معاملات اچھے رکھیے، فیر رہیے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ ظلم کیجیے نہ کوئی کرے، کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، کسی کی خاموشی کو آپ زبان نہ دیجیے. اور اسی طرح سب سے پیارا تقاضا، السابقون الاولون بنیے. اپنے بچوں کو سکھائیے، بیٹا آپ نے ہمیشہ فرسٹ آنا ہے، نماز میں فرسٹ، قرآن میں فرسٹ، کلاس میں بھی فرسٹ، نیکیوں میں سبقت، ہر نیکی اول وقت میں کرنی ہے. اور پھر نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے کیا، نماز اول وقت میں ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی فضیلت بہت رکھی ہے. پھر ذرا مرد ہیں اور گھر کے بچے میل جو ہیں، ان کو اول وقت میں مسجد جانے اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک امام تھے، وہ کہتے ہیں پچھلے 40 سال میں ایک بار بھی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوئی. اور کون پہلی صف میں جائے گا جو وقت سے پہلے نکلے گا؟ منع ہے کہ لیٹ جا کر آپ پھلانگ پھلونگ کے آگے جا کے دوسروں کو تنگ کریں، تو پہلے نکلیے نیکیوں میں. اسکول میں جا رہے ہیں پہلے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا، موسیٰ آپ کو کیا ہوا، آپ اتنی جلدی کیوں آگے؟ کہ اللہ آپ کی محبت لے آئی. ہم کیسے کرتے ہیں ذرا سوچیے، کوئی آپ کے دو انویٹیشن اکٹھے آئے ایسی لیں ذرا اپنے اوپر، ایک پارٹی اور ایک درس، کس میں جائیں گے؟ حالانکہ ہر درس بینڈ پہ پارٹی میں بدل جاتا ہے. نہیں نہیں کام بڑے ہیں. ایک شادی کا کارڈ، پی سی میں شادی، اور دوسری طرف شہر میں کوئی بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں، کدھر جائیں گے ہم؟ دیکھیے، استفتح قلبک ولو افتوک، ہمیں کسی سے نہیں پوچھنا، ہمارا دل گواہ ہے، آئینہ اندر ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کرنے میں جلدی کریں، اللہ کے نبی نے کہا فتنے ٹوٹ رہے ہیں، جلدی کرو. صدقہ جو ہوتا ہے انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے. پھر اس طرح نیکی کا جو موقع ملے جلدی کر کے فائدہ اٹھائیے، اور برے کام میں پہل کرنے والا نہیں بننا. لکھیے، بی اے ٹرینڈ سیٹر ان گڈ ڈیڈس، بی اے ماڈل ان گڈ ڈیڈس. ہم کن ماڈلس کو فالو کرتے ہیں؟ حیا کے با، کیا ہے بیچ میں؟ ہر نیکی میں جلدی آئیے. پھر یاد رکھیے ایک بات، کہ جو لوگ اللہ کے کام اور اس کے ذکر کو اولیت دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں اولیت دیں گے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ لوگ ابھی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں اپنی نیکیاں بدیاں تلوانے، حساب کتاب کرنے، اور کچھ بیچارے مسکین اور ایسے سیدھے سے لوگ ہوں گے جن کو دنیا کچھ سمجھتی بھی نہیں تھی، اور وہ ایسے گزر جائیں گے جتنا 4 فرض عصر کے پڑھنے کا ٹائم ہے، ان کے لیے وہ یوم الدین جو 50,000 سال کے برابر کا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوگا. دوپہر کا کھانا جنتی جنت میں جا کے کھائیں گے، سورہ فرقان میں آتا ہے 19ویں پارے کے بالکل شروع میں، تو اللہ وہاں آپ کو پرائیورٹی پہ لیں گے. آپ کسی جگہ لائن پہ لوگ لگے اور کوئی آپ کو لائن سے نکالے، نہ نہ آپ کیوں لگ گئے، استغفار، آئیے جلدی، لوگ دیکھ رہے ہیں بےچارے پھنس رہے ہیں، اور ادھر سے لوگ آپ کا سامان بھی پکڑ رہے ہیں، آپ کا بورڈنگ پاس، یہ آپ کو آئیے، آپ کو وہ اچھی سی ایگزیکٹو لاؤنج میں لے جا رہے ہیں، لوگ منہ دیکھتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے بھائی، ان کو کیا ہو گیا؟ تو اللہ آپ کی پرائیورٹیز کریں گے انشاءاللہ. अच्छा, मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस याद आ गया। किसी उम्रे के दौरान बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हतीम में नफिल पढ़ा दे, क्योंकि रश की वजह से अंदर हम जाते नहीं। आखिरी दिन जो आखिरी तवाफ होता है उसमें अक्सर मौका मिल जाता है। तो मैं सारे ग्रुप को छोड़ के अपने चली गई। मैंने कहा देखते हैं, यकीन करें कि जो मैंने महसूस किया वो दूसरी एक औरत ने कैसे महसूस किया। बस उसका एक जुमला कहकर आगे चली जाऊं, पूरी बात ना बताऊं तो बेहतर है। कि वो जो वहां सिक्योरिटी मैंस होते हैं ना, एक एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, और बीच में पूरा हल्ला से बना हुआ है, और अपनी जुबान में अरबी में कहता है सिस्टर प्रेयर। अरब था, उसको लगा मैं भी क्यों अरब हूँ, आई डोंट नो। मैंने इतनी खुली जगह पे इतने आराम से पढ़ा कि मेरे कान में अपने साथ देसी सिस्टर्स की आवाज़ आई, ये कौन है, इनको क्यों इतनी इज्जत मिल रही है। वल्लाही मुझे नहीं पता ये क्या था। कोई दुआ होती है किसी वक्त की, कोई कबूल हो जाती है, अल्लाह आपके मामलों में आसानियाँ फरमाते हैं। फिर इसी तरह रात को सोते वक्त इसी नाम अलव्वल के साथ रब को पुकारें। रात को जब आंख उठे कि अलव्वल, अपनी परेशानियां खोले, और खास तौर पे आप देखिए कर्ज की अदायगी की दुआओं में ये नाम आता है। अल्लाह क्या आगे रखे, हर काम से पहले बस उसी जात को रखें, और सबसे बड़ा काम जो इस नाम पे आप करें, अल्लाह के नाम को आगे पहुंचाने में मुआविनीन बन जाइए। ये तौफीक मांगिए कि अल्लाह हमें अंसारुल्लाह बना दे, हमें नेकियों में आगे बढ़ाने वाले बना दे। जिंदगी गुजर रही है, और अल्लाह के काम में सबसे पहले अमल करने वाली मैं बन जाऊं। लोग छुपाते हैं, हाय दूसरों को ना पता लग जाए, पहले मैं खरीद लूं सेल में, फिर जो बच जाएगा वो दूसरों को मिले। नेकियों को ऐसे लिया कर, ये मेरा हिस्सा है, पहले मैं डालूंगी। मैं किसी को क्यों कहूँ, किसी को बताने से पहले मैं क्यों ना इस प्रोजेक्ट पे डालूं। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे दिल खुल जाए। कुछ चीजें इंशाल्लाह हम अगले नाम अल आखिर के साथ इसकी रिपीट करेंगे। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ और तमन्ना और ख्वाहिश है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे हर जगह अव्वल करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको फर्स्ट क्लास पास करे, और आपको फर्स्ट क्लास में सफ़र करवाए, आप इकोनॉमी से फर्स्ट में चले जाएं। जजाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।